नमस्कार, जनसत्ता में सुनिए सुर्खियां, देश दुनिया की बड़ी खबरें। चुनाव आयोग द्वारा यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल में सभी 7 चरणों में लोकसभा चुनाव करवाने का ऐलान किया गया है। चुनाव आयोग के इस ऐलान पर लालू यादव की पार्टी राजद ने आपत्ति जताते हुए बीजेपी पर प्रहार किया है। राजद की तरफ से आरोप लगाते हुए बीजेपी ने अपने फायदे के लिए सरकारी मशीनरी के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाया गया है। बंगाल में लोकसभा की 40 सीटें हैं, जबकि बिहार में यूपी की आधी 42 लोकसभा सीटें हैं। इसी संख्या का जिक्र करते हुए राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुबोध कुमार मेहता ने द इंडियन एक्सप्रेस से कहा कि हमने एनडीए सरकारों के कार्यकाल में देखा है कि कैसे सरकारी संस्थानों, ब्यूरोक्रेसी और मीडिया का गलत इस्तेमाल किया जाता है। प्रचंड गर्मी में बिहार में 7 चरणों में वोटिंग करवाने का कोई तुक नहीं है, यूपी में ऐसा करना समझ आता है। उन्होंने कहा कि बिहार में 7 चरणों में चुनाव दिखाता है कि यहाँ बीजेपी, जदयू और लोक जनशक्ति पार्टी दोनों धड़े नर्वस हैं। उन्होंने कहा कि पहले तो बीजेपी ने अपने शब्दों से पलटते हुए नीतीश कुमार को एनडीए में दोबारा एंट्री दी। अब ऐसे शेड्यूल का इस्तेमाल वो पीएम नरेंद्र मोदी की ज़्यादा रैलियां प्लान करने के लिए करेंगे और एडवांटेज के लिए सरकारी मशीनरी का जमकर इस्तेमाल करेंगे। राजद प्रवक्ता ने कहा कि हम इस लंबे शेड्यूल के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन वोटर्स को निराश कर सकता है। उन्होंने कहा कि एनडीए तेजस्वी यादव द्वारा नौकरियाँ देने के वादे से डरा हुआ है। चुनाव आयोग ने गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के होम सेक्रेटरी को हटाने का आदेश दिया है। इसके अलावा चुनाव आयोग की तरफ से मिजोरम और हिमाचल प्रदेश के जनरल एडमिनिस्ट्रेशन सेक्रेटरी को भी हटा दिया है। सूत्रों के हवाले से दी गई जानकारी के अनुसार चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के डीजीपी को भी हटाने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा चुनाव आयोग ने बीएमसी के कमिश्नर इकबाल सिंह चहल और एडिशनल कमिश्नर व डिप्टी कमिश्नर की भी छुट्टी कर दी है। चुनाव आयोग ने सभी राज्य सरकारों को उन सभी अधिकारियों का ट्रांसफर करने के आदेश दिए हैं जो इलेक्शन के काम से जुड़े हुए हैं और एक जिले में 3 साल पूरे कर चुके हैं या अपने गृह जिले में तैनात हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI को फटकार लगाई है और पूछा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी पूरी जानकारी क्यों साझा नहीं की गई। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर SBI को डेडलाइन दी है और कहा है कि आदेश का पूरा पालन करें और 21 मार्च शाम 5 बजे तक पूरी जानकारी दें। कोर्ट ने SBI चेयरमैन से 21 मार्च तक एक हलफनामा दाखिल करने के लिए भी कहा है, जिसमें पूरी जानकारी का खुलासा किया गया हो और लिखा हो कि कुछ भी छिपाया नहीं गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग SBI से जानकारी हासिल करने के बाद तुरंत अपनी वेबसाइट पर जानकारी साझा करे। SBI की तरफ से हरीश सालवे पेश हुए। CJI ने उनसे पूछा, हमने सभी जानकारी का खुलासा करने के लिए कहा था, इसमें बॉन्ड नंबर भी शामिल थे, लेकिन जानकारी अधूरी है। मामले में फिक्की और SOCHM की ओर से वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी पेश हुए। उन्होंने कहा, मैं फिक्की SOCHM की ओर से पेश हो रहा हूं, हमने एक आवेदन दायर किया है। हालांकि CJI ने कहा कि उन्हें ऐसा कोई आवेदन नहीं मिला है। CJI उन्हें सुनने से इनकार करते हुए कहा कि फैसला सुनाए जाने के बाद आप यहाँ आए हैं, अभी हम आपकी बात नहीं सुन सकते। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन SCBA के अध्यक्ष आदेश अग्रवाल ने मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ को पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने CJI से अपील की थी कि वो इलेक्टोरल बॉन्ड पर अपने फैसले की समीक्षा करें। इस पर CJI ने आज कहा, श्री अग्रवाल एक वरिष्ठ वकील होने के अलावा आप SCBA के अध्यक्ष हैं, आप प्रक्रिया जानते हैं, आपने मुझे एक पत्र लिखा, ये सिर्फ पब्लिसिटी के लिए था, खैर इसे यहीं छोड़िए, मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। वकील प्रशांत भूषण ने आज की सुनवाई पर बात करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने SBI को अपना नोटिस सुनाया, जिसमें उनसे पूछा गया कि उन्होंने खरीदार और पार्टी के सभी बॉन्ड पर अल्फा न्यूमेरिक नंबर का खुलासा क्यों नहीं किया है। कोर्ट ने कहा कि SBI को तुरंत इसका खुलासा करना होगा और SBI के अध्यक्ष को 21 मार्च को शाम 5 बजे तक एक हलफनामा दाखिल करना होगा। सुप्रीम कोर्ट से आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन को झटका लगा है। सत्येंद्र जैन की सभी याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में सत्येंद्र जैन ने अर्जी लगाई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया। अब उन्हें आज ही सरेंडर करना होगा। मनी लॉन्ड्रिंग केस में जैन ने जमानत अर्जी लगाई थी, लेकिन अब खारिज हो गई है। ये फैसला जस्टिस Bela M. Trivedi और पंकज मिथिल की पीठ ने सुनाया। पीठ ने अप्रैल 2023 के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ सत्येंद्र जैन की विशेष याचिका पर सुनवाई की, जिसमें उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था। इस मामले में 4 दिन की सुनवाई के बाद जनवरी में फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। सत्येंद्र जैन के वकील ने कहा कि वो वर्तमान में फिजियोथेरेपी से गुजर रहे हैं और सरेंडर के लिए और वक्त मांगा था। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आएं जनसत्ता.com पर। नमस्कार।